कैलिफोर्निया समय के 11:16 हैं। रीस्टार्ट का तीसरा एपिसोड आप हमारे प्यारे और सम्मानित श्रोताओं के सामने प्रस्तुत है। यह एक रहस्यवादी वैज्ञानिक कार्यक्रम है और आज तक आपने जितने भी कार्यक्रम सुने हैं उनसे इसका दृष्टिकोण बहुत अलग होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको एहसास होगा कि 99% चीज़ें जो आपने अब तक सुनी हैं आप इस कार्यक्रम में नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि यह कार्यक्रम ऐसी बातें कहता है जो बहुत से लोग कहना नहीं चाहते, या वे लोग भी जो रूमी के दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं और अपनी खुद की रूमी लॉजी पेश करते हैं, वे वास्तव में जो कर रहे हैं वह रूमी की मोना लिसा को बड़ा कर रहे हैं, ताकि रूमी की अन्य पेंटिंग्स जिन्हें हम इस कार्यक्रम में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं देखी ना जाए। मतलब वे रूमी के एक वाक्य को बढ़ावा देते हैं ताकि रूमी, सादी, हाफिज़, ख्वाजू किरमानी, सगीर इस्फहानी, खय्याम और अन्य महान रहस्यवादियों के दूसरे वाक्य न सुने जाए। हमने रूमी की एक कविता से शुरुआत की, हाथी एक अंधेरे घर में था। अगर आप इसे गूगल पर खोजेंगे प्यारे श्रोताओं तो आपको पूरी कविता मिल सकती है। ये रूमी के मान लीजिए 103, 104 या 105 छंदों के बारे में है और हम इस कहानी की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी कभी एक पूरा कार्यक्रम रूमी का सिर्फ एक छंद हो सकता है। यह इस कहानी का एक छंद हो सकता है। यह संभव है कि उदाहरण के लिए 4 कार्यक्रम रूमी के सिर्फ एक छंद को समर्पित हों। मैं एक छंद के बारे में तब तक बोलूँगा जब तक मुझे एहसास होता रहेगा, मतलब जब तक मुझे लगेगा कि मेरे पास जानकारी है जो मुझे आपको देनी चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगेगा। लेकिन रूमी की कहानी अंधेरे घर में हाथी, पहले मैं एक स्पष्टीकरण दूं, ये 3 भागों में बंटी हुई है। पहला भाग दुनिया के सभी धर्मों पर सवाल खड़ा करता है, मतलब हर धर्म जो पहले आया और हर धर्म जो बाद में आएगा, पहला भाग उन पर सवाल खड़ा करता है और एक नए धर्म का परिचय देता है जिसे दुनिया समझना नहीं चाहती। ये कहानी का पहला भाग है। ये एक ऐसे धर्म को व्यक्त करता है जैसे कि पूरी दुनिया अब तक गलतफहमी में रही है। ये एक ऐसे धर्म का परिचय देता है जो कहता है कि इन धार्मिक लोगों में से किसी के पास भी वास्तव में ये धर्म नहीं है। तो ये 103 या 104 छंदों की कहानी 3 भागों में बंटी हुई है। पहले भाग में धर्म पूरी तरह से हवा में है। ये कहता है कि जिस धर्म की तुम बात करते हो वह एक मजाक है, एक कॉमेडी है। मैं तुम्हें जो धर्म समझाना चाहता हूँ वह दूसरा धर्म है। और रूमी के विचार के 5 मुख्य तत्वों में से एक ये है कि वह एक नए धर्म की व्याख्या करता है। वे नहीं चाहते कि इसका प्रचार हो। दुनिया ने हाथ मिला लिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस विषय को बढ़ावा न मिले। रूमी, हाफिज़, सादी, खय्याम, ये सभी लोग एक नए धर्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसे 72 राष्ट्रों का युद्ध जानने नहीं देता। 73वां रास्ता, जैसा कि हाफिज कहते हैं, दिखाई नहीं देता। 72 राष्ट्रों, मिल्लतों के युद्ध को क्षमा कर दो, क्योंकि उन्होंने सच्चाई नहीं देखी और अफसानों, कथाओं का रास्ता चुन लिया। मूल फारसी, जंगे हफ्ता दो मिल्लत हमारा उज्र बिने चून दी दंद हकीकत रहे अफसाना जदंद। तो दुनिया के लोगों की एक समस्या यह है कि वे यह बिल्कुल नहीं समझना चाहते कि रूमी एक नया धर्म दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई नया धर्म है, यह है कि एक धर्म मौजूद है और मैं उसे अस्पष्ट करने के लिए 72 धर्म बना दूंगा। रूमी कहते हैं कि मैं 72 धर्म बना दूंगा ताकि यह सच्चा धर्म खो जाए। और अगर आप देखते हैं कि इसके बारे में अभी भी बात हो रही है तो इसका कारण ये है कि कुछ लोग जानते हैं, क्योंकि सभी रहस्यवादियों ने इस धर्म को बढ़ावा दिया और वे दुनिया में केवल वही थे जिन्होंने ऐसा किया। तो दुनिया के 99% लोगों ने, चाहे जानबूझकर या अज्ञानता से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें से कुछ साक्षर हैं, कुछ खाने गए, किराने की दुकान पर गए और वापस आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही मामलों में उन्होंने यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि यह बात जानी ना जाए। कहानी के दूसरे भाग में वह ऐतरत की व्याख्या करते हैं। बहुत से लोग ऐतरत वंश, आध्यात्मिक वंश के बारे में नहीं जानते, मतलब वे नहीं जानते कि यह क्या है। वह परिभाषित करते हैं कि एक रहस्यवादी की ऐतरत जरूरी नहीं कि उसका बच्चा हो। दूसरे भाग में वह ऐतरत की इस अवधारणा की व्याख्या करते हैं जिस पर इस्लाम में इतना जोर दिया जाता है। वह ऐतरत की अवधारणा को चुनौती देते हैं और यहाँ ये विषय खुद दो हिस्सों में बंट जाता है। मतलब वह ऐतरत पर सवाल उठाते हैं, खुदा को चुनौती देते हैं और पूरी तरह से एक अलग दृष्टिकोण के साथ दो दृष्टिकोणों को हवा में उछाल देते हैं। और इस कहानी के तीसरे भाग में वह एक तरह से वहदतुल वजूद, अस्तित्व की एकता को साबित करते हैं, या यूं कहें कि उस पर जोर देते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी विशिष्ट कहानियां हैं। मैंने उस छंद तक पढ़ा था जो कहता है, तुम खुद से सुनते हो और सोचते हो कि यह कोई और है। नहीं, वह यह था, तू एक नहीं है ऐ मेरे अच्छे दोस्त, बल्कि एक ब्रह्मांड और एक गहरा समंदर है। पिछले कार्यक्रम में हमने यहाँ तक समझाया था कि रूमी और ये अन्य छंदों में भी है, इंसान को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी आकाश गंगा मिल्की वे को उदाहरण के लिए उसके अपने पैर के नाखूनों में से एक मानता है। मतलब रूमी हर उस चीज़ के पदार्थ को जो खुदा ने बनाया है इंसान के शरीर के समान देखता है। ध्यान दें, वह इसके पदार्थ को इंसान के शरीर के समान देखता है। पूरी मिल्की वे गैलेक्सी उदाहरण के लिए आपकी एक उंगली के दाहिने हिस्से का नाखून है और इंसानी रूह, इंसानी आत्मा, इंसानी कल्पना, इंसानी सादृश्य, इंसानी अनुमान और इन सभी चीज़ों को वह अन्य प्राणियों के समान देखता है जिनके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। ये ब्रह्मांड के उस 85% हिस्से में है जिसे लोगों ने अभी तक नहीं खोजा है। हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, हम अगले छंद पर जाते हैं। तो हम यहाँ से कहानी फिर से शुरू करते हैं और अगला छंद पढ़ते हैं। खामोश रहो ताकि तुम उन खामोश प्रेरित लोगों से वह सुन सको जो न वाणी में समा सकता है और न ही अभिव्यक्ति में। वह कहता है, तुम मुझसे कुछ भी समझने के लिए, रूमी यह कहते हैं, कुछ भी समझने के लिए तुम्हें पहले अपना मुंह बंद करना सीखना होगा, बोलो मत। या वह कहता है कि अगर तुम कुछ समझना चाहते हो तो बोलो मत, बात मत करो, खामोश रहो। अंग्रेजी में वह कह रहा है शट अप। ये बहुत विनम्र है। वह कहता है, खामोश रहो ताकि तुम उन खामोश प्रेरित लोगों से सुन सको। अगर तुम प्रेरित लोगों से कुछ समझना चाहते हो तो तुम्हें खामोश रहना होगा जो समा नहीं सकता। वह कहता है, यह चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वह न तो वाणी में आती है और न ही अभिव्यक्ति में। अजीब बात है, उसने अभी अभी पूरे गूगल को उड़ा दिया। वह कहता है कि गूगल पर जो कुछ भी है वह एक अभिव्यक्ति है। दुनिया में कोई भी जो कुछ लिखता है वह वाणी में है। वह कहता है कि वाणी और अभिव्यक्ति वह नहीं समझ सकती जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और तुम जो मैं कह रहा हूँ उसे समझने के लिए बैठ जाओ और अपना मुंह बंद करो। खामोश रहो ताकि तुम उस सूरज से सुन सको जो न किताबों में आता है और न ही उपदेशों में। वह कहता है कि तुम्हें उस सूरज से सुनने के लिए अपना मुंह बंद करना होगा जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा विषय रहस्यवाद और सूफीवाद का विषय न किताबों में आता है और न ही उपदेशों में। उपदेश ऐसा है, वो उपदेशक जो मेहराब और मिंबर पल्पिट पर यह जलवा दिखाते हैं, जब वे अकेले होते हैं तो वे कुछ और ही काम करते हैं। मूल फारसी वाइजान के ई जलवह दर मेहराब ओ मिंबर मी कुनंद चू बखलवत मी रवंद आकार ए दिगर मी कुनंद। उपदेश आपके जानने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और किताब। तो अब खुरासान के मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद के वाक्य से मैंने जो सबूत पेश किया उसके अनुसार वह आधिकारिक तौर पर कहते हैं कि जो शब्द रूमी बोलते हैं वे किसी किताब में नहीं हैं। आप रहस्यवाद को किताब से नहीं समझ सकते और आप इसे वाणी और अभिव्यक्ति के माध्यम से नहीं समझ सकते। आप इसे बकवास और बहस से नहीं समझ सकते। आप इसे केवल जुनून और परमानंद से समझ सकते हैं। इसका मतलब है, रहस्यवाद को समझने के लिए आपको इसके अंदर जाना होगा और समझना होगा। यहाँ वह अल्बर्ट आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत की व्याख्या कर रहा है।
मतलब वक्ता, श्रोता और पर्यवेक्षक। ध्यान दें, एक पागलखाना तीन भागों में बंटा होता है। वे लोग जो पागलखाने का दौरा करने आते हैं, वे आते हैं, पागलों को देखते हैं, वे या तो हंसते हैं या दुखी होते हैं और चले जाते हैं। पागलखाने के कर्मचारी और पागल, उन लोगों में से कोई भी जो पागलखाने में आते हैं और उनसे मिलते हैं, पागलों से मिलते हैं, वे खुद को अस्पताल के कर्मचारियों की जगह पर नहीं रख सकते, और जो कर्मचारी इस पागलखाने से समझते हैं वे नहीं समझते, वे बस देखने और जाने के लिए आए थे। और जो पागलखाने में कर्मचारी हैं, मतलब वे उपदेशक हैं, वे उपदेश देते हैं, वे उपासक हैं, वे तपस्वी हैं, ये लोग बस पागलखाने के कर्मचारी हैं। एक पागल को समझने के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। तुम प्रेम के पागलपन और दीवानगी के बारे में कुछ नहीं समझते, तुम रहस्यवाद के बारे में कुछ नहीं समझते, इसे समझने के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। इसे पर्यवेक्षक कहा जाता है, मतलब किसी कोण, किसी दृष्टिकोण, किसी ऐसी चीज के सापेक्ष एक व्यक्ति का नज़रिया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सभी उपदेश, सभी किताबें, सभी वाणी और सभी अभिव्यक्तियाँ हवा में उड़ गईं। अब कुछ लोग कह सकते हैं, ठीक है, ये रूमी के दो छंद थे, शायद वह उपदेशक उपासक पर हमला कर रहा था। खैर, हमें यह देखने की ज़रूरत है कि रूमी क्या कहते हैं। जब आप रहस्यवाद को समझना चाहते हैं तो रहस्यवादी रूमी है। आप इटली में उन लोगों की तरह नहीं जा सकते जो गोल गोल घूम रहे हैं और फिर हम कहें तुम कहाँ हो। हम कहते हैं कि हम मशाहत जा रहे हैं और सब हंसते हैं। जब आप रहस्यवाद को समझना चाहते हैं तो आप इसे एक उपासक आबिद से नहीं समझ सकते। पिछले कार्यक्रमों में मैंने समझाया था कि धर्म का मार्ग रहस्यवाद तक नहीं ले जाता, धर्म यानी वहां तक नहीं पहुंचते। अब रूमी, हाफिज और सादी एक और धर्म की बात करते हैं जिसे हमें भविष्य के कार्यक्रमों में समझाना चाहिए। तो हमने कहा कि धर्म उस रास्ते तक नहीं पहुंचता। साक्षरता और विज्ञान का रहस्यवाद से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे बुरे हैं, वे बहुत अच्छे हैं, बस उनका रहस्यवाद से कोई संबंध नहीं है। उनका नाम शरीयत, धार्मिक कानून के धर्म का परिणाम है, और शरीयत को तरीकत, आध्यात्मिक पथ में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। शरीयत को आध्यात्मिक पथ में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आध्यात्मिक पथ का मतलब है कि तुम पागल हो। आध्यात्मिक पथ पागलखाने में वह पागल है, तुम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। इस कारण से मैं इसी उपदेश के विषय पर कुछ छंद पढ़ूंगा। तो देखिए, अब इन दो छंदों में रूमी के अनुसार उपदेश, अभिव्यक्ति, किताब और वाणी सब हवा में उड़ गए हैं, और रूमी को समझने के लिए वह आपसे कहते हैं, खामोश रहो और सुनो। सादी ये कहते हैं। अब वे ये किससे कह रहे हैं? देखिए, उदाहरण के लिए डॉ सौरोश जैसा व्यक्ति, ये आदमी एक साक्षर आदमी है, वह पढ़ा लिखा है, वह एक बहुत अच्छा आदमी है, एक बहुत ज्ञानी आदमी है, उसकी शब्दावली बड़ी है, वह रहस्यवाद के बारे में एक रत्ती भर भी नहीं समझता, वह रूमी के रहस्यवाद के स्तर का 3% भी नहीं समझता। क्यों? क्योंकि वह रहस्यवाद के दायरे में पागल नहीं है। वैसे याद रखें, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछने वाला पहला सवाल जो रहस्यवाद को समझने का दावा करता है, उदाहरण के लिए एक मिस्टर रफ़ीपुर भी हैं जिनके बारे में वे बात करते हैं, मैं नहीं समझता, मैं उन्हें नहीं जानता। अब सौरोश को मैं जानता हूँ, डॉ सौरोश को मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि वह एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, बाकी को मैं नहीं जानता। अब कुछ लोगों ने उदाहरण के लिए फेसबुक पर चीज़ें पोस्ट की और मुझे बताया, देखो मेरे प्यारे, उससे पूछने वाला पहला सवाल, रहस्यवाद का पहला सवाल यह है, क्या तुम खुदा को देखते हो? दो संभावनाएं हैं, या तो वह हाँ कहता है या वह नहीं कहता है। अगर वह नहीं कहता है तो फ्लश खींच दो, क्योंकि रहस्यवाद में पहली शर्त देखना है। आपको रहस्यवाद में मामले को समझना होगा। आप सिर्फ बकवास और बहस से बात नहीं कर सकते। अगर वह कहता है मैं खुदा को नहीं देखता, तो वह बकवास और बहस में है। अगर वह कहता है मैं देखता हूँ, तो वह जुनून और परमानंद में है।
ध्यान दें, यह इस्म ए आज़म और अब्रू, ये सब जिसके बारे में रूमी और अत्तार और अन्य बात करते हैं, फलां फलां व्यक्ति का अब्रू, वह व्यक्ति कौन है, नाम शब्द का क्या अर्थ है, इंशाअल्लाह एक दिन अगले दो या तीन कार्यक्रमों में मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में कुछ ऐसा कहूँगा जो 99% ने कभी नहीं सुना है। ये बहुत दिलचस्प है, वे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। हम सच में नहीं जानते, हम सच में नहीं जानते, वे धार्मिक झूठ बोलते हैं। अब आपको उनसे पूछना होगा, क्या तुम जुनून और परमानंद में हो या बकवास और बहस में? अगर तुम जुनून और परमानंद में हो तो मुझे इसे समझने में सक्षम होना चाहिए। एक निशानी, उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं कि मिस्टर फलां फलां रूमी के बारे में बात करते हैं तो उनसे पूछें, हर सांस जो अंदर ली जाती है वह जीवन का विस्तारक है। का क्या मतलब है? अगर वह सिर्फ इस वाक्य का अनुवाद करता है तो फ्लश खींच दो, उसका क्या फ़ायदा? अनुवाद तो देहखोदा डिक्शनरी में है, एक देहखोदा उठाओ और उसका अनुवाद कर लो। तुम्हें देखना होगा, इन चीज़ों को समझने के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। ध्यान दें, दो लोग मुल्क, राज्य और दीन, धर्म के दुश्मन हैं, मिस्टर सादी महान शेख कहते हैं। एक महान रहस्यवादी ने उन्हें शेख की उपाधि दी। ध्यान दें, शेख अजल सादी कहते हैं, दो समूह देश के दुश्मन हैं, ईरान, जापान, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, राज्य और धर्म के, और वे ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, हिंदू और सभी धर्मों के दुश्मन हैं। सादी कहते हैं, दो लोग मुल्क और दीन के दुश्मन हैं, एक बिना सहनशीलता का बादशाह और दूसरा बिना ज्ञान का जाहिद, ज़ेलट धर्मपरायण। फिर वे ज्ञान की व्याख्या भी करते हैं, ज्ञान का मतलब है कि तुम जो कुछ भी कहते हो उसे देखते हो, यह ज्ञान है। हेलो, मैं एक न्यूट्रॉन स्टार हूँ, वह कहता है अपना मुंह बंद करो। जब तुम एक न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बात करते हो तो तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। तुम एक न्यूट्रॉन स्टार को तब समझते हो जब तुम उसे देखते हो, मतलब तुम न्यूट्रॉन स्टार के अंदर जाते हो। जब तुम इसे समझ गए हो, इसका मतलब है कि तुम इसे देखते हो। मैं प्रार्थना करता हूँ, किसका सामना करते हुए? खुदा का। क्या तुम खुदा को देखते हो? नहीं। सादी कहते हैं कि ये कल्पना, सादृश्य, अनुमान और भ्रम है। तुमने एक तकिया पकड़ लिया है और उसे चूम रहे हो, यह तुम्हारी पत्नी नहीं है। अगर तुम किसी को चूमना चाहते हो तो तुम्हें उस लड़की को अपने सामने बिठाना होगा और उसे चूमना होगा। तुम मर्लिन मुनरो की तस्वीर से आनंद नहीं ले सकते, जैसा कि कुछ दोस्त कहते हैं। तुम्हें मर्लिन मुनरो को अपने सामने बिठाना होगा, तब तुम आनंद ले सकते हो। तुम कैसे समझते हो कि यह एक तस्वीर है? अभी अगर मैं एक कमरे का दरवाज़ा खोलूं और देखूं कि कोई मर्लिन मुनरो की तस्वीर को चूम रहा है, ये और वह कर रहा है, तो तुम कहोगे यह एक तस्वीर है, उसे खुद होना चाहिए। तुम खुदा की ओर मुंह करके कैसे प्रार्थना कर सकते हो? एक चर्च या सिनेगॉग में जा सकते हो और खुदा का कुछ भी नहीं देख सकते, तुम खुदा की एक तस्वीर देख रहे हो। तुम सचमुच एक तकिए को चूम रहे हो यह सोचकर कि यह मर्लिन मुनरो है। एक चर्च में तुम या तो जीसस को देखते हो या नहीं। क्या तुम जीसस को देखते हो या नहीं? क्या तुम जीसस के खुदा को देखते हो या नहीं? या जैसा कि तुम कहते हो, लॉर्ड जीसस या लॉर्ड के जीसस, क्या तुम उसे देखते हो या नहीं? अगर तुम देखते हो तो तुम रहस्यवाद में हो, अगर नहीं तो तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम एक तस्वीर चूम रहे हो। ध्यान दें, हम रूमी के दो छंदों के बारे में बात कर रहे हैं। वह कहता है अपना मुँह बंद करो और सुनो, रूमी कहते हैं। तो सादी ने भी कहा, बिना ज्ञान का जाहिद, उबैद जहकानी कहते हैं। खुशखबरी, ऐ मुसलमानों, बिल्ली एक पवित्र तपस्वी उपासक बन गई है। ठीक है, हम कवियों के सबूतों पर जाते हैं। हम देखते हैं कि कवियों के सबूत रहस्यवादियों के सबूतों से अलग हैं। एक रहस्यवादी कवि नहीं होता, एक कवि एक कार की तरह होता है जिसमें एक रहस्यवादी तुम तक पहुंचने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए, हमें कुछ देने के लिए सवारी करता है। कविताकार है, मैकेनिक है, कुछ ऐसा जिस पर आप एक काम करने के लिए सवारी करते हैं। वरना रहस्यवाद का कविता से कोई लेना देना नहीं है। वह इस सरल भाषा में बोलने के लिए मजबूर है क्योंकि तुम एक बच्चे के साथ काम कर रहे हो, तुम्हें एक बच्चे की भाषा बोलनी होगी क्योंकि दुनिया के लोग बच्चे हैं, पर्दा वापस नहीं खींचा जा सकता। वह समय जब पर्दा उठाया जाता है, तुम बस पर्दे को एक तरफ नहीं खींच सकते, वरना हम सब की फट जाएगी। ये सच में ऐसा ही है। अगर पर्दा एक तरफ खींच दिया जाता तो ये सच में ऐसा ही होता। इसलिए वह तुमसे एक बच्चे की भाषा में बात करता है। मेरे और तुम्हारे लिए रूमी कविता लिखने के लिए मजबूर है। वह खुद कहता है कि कविता लिखना मेरी शान में नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। उपासक, आबिद और जाहिद, धर्मपरायण, सभी रहस्यवादी। जब मैं रहस्यवादी कहता हूँ तो मैं सभी नामों को एक बार में फिर से सूचीबद्ध नहीं करना चाहता। सनई और इराकी और अत्तार से लेकर बायजीद बस्तामी और शेख खरकान तक और आगे ख्वाजू किरमानी, सगीर इस्फानी तक, सीधे सादी, हाफिज तक। जैसे जैसे आप इन रहस्यवादियों के साथ आगे बढ़ते हैं, जिन नामों की मैं आपको घोषणा करता हूँ, वे सभी जाहिद को रहस्यवाद की ओर बढ़ते हुए नहीं देखते हैं। वे उपासक को भी रहस्यवाद का हिस्सा नहीं मानते। मतलब एक उपासक रहस्यवाद को नहीं समझ सकता, एक जाहिद इसे नहीं समझ सकता। और याद रखें, जाहिद और उपासक, एक उपासक वह होता है जो हमेशा इबादत उपासना की स्थिति में होता है, और एक जाहिद वह होता है जिसने वास्तव में तकवा पवित्रता हासिल की है। मतलब उसने शरीयत धार्मिक कानून में वास्तव में कड़ी मेहनत की है। वे रहस्यवाद को तरीकत आध्यात्मिक पथ में देखते हैं। वे एक और रास्ता देखते हैं। वे पूरी तरह से कुछ और देखते हैं। हाफिज कहते हैं, रिंदों में ऐब मत निकाल ऐ पाक साफ जाहिद, क्योंकि दूसरों का गुनाह तेरे नाम पर नहीं लिखा जाएगा। मूल फारसी, ऐब ए रिंदा मकुन ए जाहिद ए पाकी जह सरिश्त, कि गुनाह ए दीगरां बर तो न ख्वाहंद नविश्त। वह कह रहा है, मिस्टर जाहिद, मिस्टर उपदेश देने वाले, मिस्टर उपदेशक, मिस्टर जो खुद को उस्ताद कहते हैं, मसनवी की व्याख्याएं दाएं बाएं उगल रहे हैं, अगर मैं तुमसे रूमी के बारे में 5 सवाल पूछूं तो तुम पूरी तरह से खो जाओगे। छोड़ो भी, तुम एक रहस्यवादी के स्तर पर भी नहीं हो। रहस्यवादी तुम्हारे साथ बैठेंगे भी नहीं। तुम रहस्यवाद के बारे में कुछ नहीं समझते। रहस्यवाद में होने के लिए तुम्हें रहस्यवाद के रास्ते पर होना होगा। ध्यान दें, हाफिज कहते हैं, रिंदों में ऐब मत निकाल। रिंद महान सूफी रहस्यवादी का दृष्टिकोण है। यह वह नाम है। वह कहता है कि हम में ऐब मत निकालो, ऐ जाहिद जो पाक साफ भी है। अब मुझे यहाँ एक छोटा सा वाक्य कहने दो ताकि तुम बात समझ सको। देखो, रहस्यवाद में ये कहता है कि अगर तुम गुलाब की झाड़ी के नीचे ओस की बूंद हो, या समंदर में मशाहदी अब्बास के पेशाब की एक बूंद हो, तो पानी की बूंद का विकास समंदर तक पहुँचना है। ये कहता है, ये सच है मिस्टर जाहिद, तुम्हारी प्रकृति शुद्ध है, तुम एक बहुत खूबसूरत बूंद हो, लेकिन तुम एक फूल के नीचे हो और तुम सुअरों, गधों, कुत्तों और घोड़ों का भोजन बन जाओगे। लेकिन मैं मशहदी कासिम के पेशाब की एक बूंद हो सकता हूँ जो अब समंदर में पेशाब कर रहा है। मैं समंदर तक पहुँच गया हूँ, बूंद का विकास, ताकि ब्रह्मांड का चक्र, जहाँ अरबों बूंदें प्रति सेकंड ऊपर जाती हैं और उसी सेकंड नीचे आती हैं, ब्रह्मांड के विकास के लिए बूंद का समंदर तक पहुंचना है। तुम इसे रहस्यवाद में भी देखते हो तो यह भी कसौटी नहीं है। यहाँ हाफिज बहुत विनम्रता से बोल रहे हैं। वह कहते हैं, रिंदों में ऐब मत निकाल ऐ पाक साफ जाहिद, ऐ बूंद जो गधों और कुत्तों का भोजन बनती है, तुम ओस की बूंद हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि दूसरों के गुनाह तुम्हारे नाम पर नहीं लिखे जाएंगे। तुम खुद क्यों कहते हो कि हर कोई अपने गुनाहों के साथ अपनी कब्र में जाता है, फिर भी तुम दूसरों में इतने ऐब क्यों निकालते हो, और दूसरों के ऐब और अपनी नेकी मत देखो। फिर से हाफिज, तरीकत आध्यात्मिक पथ पर नाराज़गी के लिए कोई जगह नहीं है। शराब लाओ। हर कड़वाहट जो तुम देखते हो, एक बार जब पवित्रता आती है तो चली जाती है।
साहिब तबरीजी, देखो, मैं उपासक, जाहिद, उपदेशक, उपदेश देने वाले, उस्ताद, जो कुछ भी, अल्लामा, महान ज्ञानी, जो हम अपने साथ जोड़ते हैं, के बारे में हर किसी से सबूत ला रहा हूँ। तुम जानते हो ये हर युग में अलग होता है। अगले कार्यक्रमों में मैं खुद रहस्यवादियों से रहस्यवाद के सबूत लाऊंगा। मैं हुसैनी से रहस्यवाद का सबूत नहीं लाया ताकि तुम मुझसे कह सको कि चुप हो जाओ और अपना मुंह बंद करो, या किसी देश के किसी प्रसिद्ध उपदेशक से। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से सबूत ला रहा हूं जो खुद रहस्यवाद में है। रूमी, साहिब तबरीजी, सनई गजनवी, हाफिज, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिसने सरकारी पैसे से एक किताब प्रकाशित की हो।
सबूत खुद उन्हीं से हैं। साहिब तबरीजी तो इसे पूरी तरह से रद्दी कर देते हैं। साहिब तबरीजी कहते हैं, मच्छर अपनी रातों की इबादत से लोगों का खून चूसता है, होशियार जिन्हार रात को इबादत करने वाले जाहिद से होशियार। जिन्हार एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है तुम्हारी माँ की कसम। तुम जानते हो जब एक भेड़िया हमला करता है वे कहते हैं भागो, इसका मतलब है तुम्हारी माँ की कसम भागो। जिन्हार का मतलब ये है, इसका मतलब है भागने का चरम, इसका मतलब है भागो, अगर तुम रुके रहे तो तुम बर्बाद हो गए। साहिब तबरीजी कहते हैं, मच्छर अपनी रातों की इबादत से लोगों का खून चूसता है, रात को इबादत करने वाले से होशियार। वह कह रहा है यह सच है कि मच्छर तुम्हारा खून चूसता है, मच्छर भी रात को जागने वाला इबादत करने वाला है, लेकिन याद रखना मच्छर को काटने दो, एक चोर को तुम्हारा पैसा चुराने दो, तुम पर आपदा आने दो, लेकिन इस रात को इबादत करने वाले जाहिद से सावधान रहना, क्योंकि तुम बाद में सच में बर्बाद हो जाओगे, इस पर विचार करो। हाफिज, अगर जाहिद हाफिज के रिंदाना रोग्सवे तरीके को नहीं समझता तो क्या फ़र्क पड़ता है? शैतान उन लोगों से भागता है जो कुरान पढ़ते हैं। वह कह रहा है जाहिद जाहिद क्यों बना, क्योंकि उसने केवल कुरान पढ़ी। वह कह रहा है कि हम रिंद हैं, हम कुरान पढ़ते हैं। रूमी कहते हैं हमने कुरान से मगज कर्नल ले लिया और छिलका गधों के लिए छोड़ दिया। रूमी ने खगोल विज्ञान से भी मगज लिया, रूमी ने चिकित्सा से भी मगज लिया, हमने चिकित्सा से भी मगज ले लिया और छिलका गधों के लिए छोड़ दिया। वह हर चीज़ के बारे में यह कह सकता है। हाफिज़ कहते हैं कि अगर जाहिद हाफिज़ के रिंदाना तरीके को नहीं समझता तो चिंता मत करो, क्योंकि मैंने देखा है कि शैतान जाहिदों के इस कुरान पढ़ने वाले कबीले से उनकी शरीयत में भागता है, एक ऐसी शरीयत जिसे उन्होंने समझा भी नहीं है। फिर से हाफिज़ कहते हैं, गर जाहिद न बबुर्द रह बहाल रिंदा माजूर अस्ट। इश्क एक ऐसा मामला है जो हिदायत गाइडेंस पर निर्भर करता है। फारसी से अनुवाद, अगर जाहिद को रिंदों की हालत का रास्ता नहीं मिला तो वह क्षम्य है। प्रेम इश्क एक ऐसा मामला है जो मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। ध्यान दें कि हाफिज क्या कह रहे हैं। ध्यान दें, वह आधिकारिक तौर पर हर छंद में तरीकत और रहस्यवादी की बात कर रहे हैं। वह कहते हैं अगर जाहिद को रिंदों की हालत का रास्ता नहीं मिला तो वह क्षम्य है। इश्क एक ऐसा मामला है जो हिदायत पर निर्भर करता है। वह कहते हैं कि बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि जो कोई रहस्यवाद को समझना चाहता है उसे हिदायत मिलनी चाहिए, मतलब खुदा को उस पर मेहरबानी करनी चाहिए, ब्रह्मांड को उसे एक वाइब देना चाहिए, उसके अंदर कुछ होना चाहिए। और खयाम इसे और भी खूबसूरती से कहते हैं, जाहिद कहता है जन्नत स्वर्ग और हूरें अच्छी हैं, मैं कहता हूँ अंगूर का रस अच्छा है, यह नकद लो और उस उधार को छोड़ दो, क्योंकि ढोल की आवाज़ दूर से ही सुहानी लगती है।
रूमी आधिकारिक तौर पर कहते हैं, मैं मुल्क का जाहिद था, मैं मिंबर का मालिक था, किस्मत ने मेरे दिल को एक आशिक और तेरे लिए तालियां बजाने वाला बना दिया। मूल फारसी, जाहिद ए कशवरी बूदम साहिब ए मिंबरी बूदम करदे कजा दिले मरा आशिक ओ कफ जनिए। तो सुनो, वह कहता है कि मैं रहस्यवाद को समझने से पहले एक जाहिद था। वह इसे खूबसूरती से कहता है, यह हुसैनी के शब्दों की पुष्टि है जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होता है। ये दो छंद काफ़ी हैं सबूत को फिर से बताने के लिए। मैं कविता को एक बार फिर पढ़ूंगा और रूमी के साथ समाप्त करूंगा। मैं मुल्क का जाहिद था, मतलब तुम एक गांव के जाहिद हो, एक छोटे से गांव के जाहिद हो, शायद तुम किसी जगह के जुमे की नमाज के इमाम हो, या मुझे नहीं पता कि किसी जगह के क्या हो, तुम किसी क्षेत्र के पादरी हो। वह कहता है मैं मुल्क का जाहिद था, मतलब मैं परम जाहिद था, मैं मुल्क का जाहिद था, मैं मिंबर का मालिक था, मैं ये चीज़ें भी था। किस्मत ने मेरे दिल को एक आशिक और तेरे लिए तालियां बजाने वाला बना दिया। किस्मत ने मेरी गर्दन पर वार किया, मैंने तुम्हारे खूबसूरत शम्स को देखा, मैंने तुम्हें समझने के लिए खुद के साथ बहुत कुछ किया। यही छंद दिखाता है कि मिस्टर रूमी कहते हैं भले ही कोई जाहिद हो उसे रास्ता नहीं मिलेगा, कस्मत ने इसे बनाया, नियति खुदा ने चाहा, ब्रह्मांड ने चाहा, मिल्की वे ने चाहा, अल्फा सेंट्री ने चाहा, पृथ्वी ग्रह के सबसे करीबी पहले तारे ने और आगे बढ़ो बिग बैंग ने चाहा। कस्मत ने मेरे दिल को एक आशिक और तेरे लिए तालियां बजाने वाला बना दिया। मैं रूमी के अंतिम वाक्य के साथ समाप्त करूँगा। तो रहस्यवाद, धर्म और विज्ञान के बीच का अंतर यह है, धर्म और विज्ञान विकास की स्थिति में है लेकिन रहस्यवाद को विकास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही यह वही था जो यह बिल्कुल अंत में होगा। और रहस्यवाद एक समंदर है जिसे विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद। इंशा अल्लाह हम अगले कार्यक्रम में आपके साथ होंगे। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें। मेरा विश्वास करो, अभी मैं इसे हफ्ते में एक बार कर रहा हूँ लेकिन मैं सच में इसे हफ्ते में 3 रातें करना चाहता हूँ। अगर मुझे पता है कि हमारे पास 1.5-2 मिलियन 15-20 लाख श्रोता हैं, अभी उन्होंने संख्या 1,85,000 लिखी है, हमारे पास इससे ज़्यादा श्रोता नहीं है। अगर यह 1 या 2 मिलियन तक पहुँच जाता है, इसे शेयर करें, सबको बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, रेडियो पस्तो रीस्टार्ट प्रोग्राम, तब हम हफ्ते में 2 या 3 रातें एक साथ मज़ा कर सकते हैं। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा इरादा खुदा की कसम किसी का अपमान करना नहीं है। मैं बस एक तोते की तरह रूमी, सादी और हाफिज़ के शब्दों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। हमेशा की तरह धन्यवाद, हुसैनी।
जो सबूत मैंने अभी आपको रहस्यवादियों से पेश किए हैं उनसे रूमी के इन 2 छंदों की व्याख्या होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वक्ता, श्रोता और संबोधित व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई उपदेश देता है, उपदेशक है, उस्ताद है, साक्षरता रखता है, तो उसे इस मामले की कोई समझ नहीं होगी। रहस्यवाद शरीयत का मार्ग नहीं है, हालांकि शरीयत इसके भीतर हो सकती है। हाँ, शरीयत भी इसमें है, जैसे विज्ञान है। अब हमने अभी तक विज्ञान के बारे में बात नहीं की है, हम भविष्य के कार्यक्रमों में करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं कि रहस्यवाद को समझने का तरीका यह रास्ता बिल्कुल नहीं है जिस पर तुम हो, यह दूसरा रास्ता है, तुम्हें पागल बनना होगा। खामोश रहो ताकि तुम उन खामोश प्रेरित लोगों से सुन सको। वह कहता है, क्या तुम जानते हो कि तुम क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम इतनी बातें करते हो, तुम्हारी आवाज़ इतनी तेज़ है कि तुम दूसरे व्यक्ति को सुनने नहीं देते। तुमने एक बहस में देखा होगा कि कोई कहता है, सर 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए ताकि मैं बोल सकूं। ये वही बात है। वह कहता है, सर बोलो मत, तुम कुछ नहीं समझते और तुम बस किताबें प्रकाशित कर रहे हो। वह कहता है, खामोश रहो ताकि तुम उन खामोश प्रेरित लोगों से सुन सको जो ना वाणी में आता है और न ही अभिव्यक्ति में। खामोश रहो ताकि तुम उस सूरज से सुन सको जो न किताबों में आता है और न ही उपदेशों में। और वह उन्हीं सबूतों के साथ किताब पर सवाल खड़ा करता है जो मैंने तुम्हें पेश किए। क्यों? क्योंकि वह सही है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, सभी धार्मिक किताबें पढ़ते पढ़ते मर जाऊं। अगर तुम कुछ समझना चाहते हो तो तुम्हें सभी धार्मिक किताबें पढ़नी होंगी। अगर तुमने धर्मों में से एक को नहीं पढ़ा है तो तुम धर्म के बारे में कुछ नहीं समझते, क्योंकि शायद वे दूसरे धर्म सही हों, तुम नहीं जानते। भले ही तुम दुनिया की सारी किताबें पढ़ लो, तुम कुछ नहीं समझोगे। क्यों? पहला, तुम्हारे पास उन्हें पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें 500 साल 1,000 साल जीना होगा, तो ये बेकार है। तो रास्ता निश्चित रूप से यह नहीं है, क्योंकि कल अगर खुदा तुम्हें रोके और कहे, यहां आओ देखें जरा, तुमने रास्ता क्यों नहीं ढूंढा? तुम कहोगे, मेरे मालिक, मैं किताबों के पेज 456,352 पर था, मैं अभी तक सब कुछ पढ़ने के लिए अंत तक नहीं पहुंचा था और मैं मर गया। और खुदा कहेगा, हाँ बिल्कुल, कृपया आगे बढ़ें, क्योंकि तुम सही हो। जब तक कि रहस्यवाद का मार्ग किताब का मार्ग ही ना हो। क्यों? क्योंकि तुम देखते हो कि एक चरवाहा जैसा आदमी रहस्यवाद में प्रवेश कर जाता है, तो रहस्यवाद का मार्ग किताब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सबूत हैं, कल खुदा जिसे भी बुलाएगा तुम कह सकते हो मैं किताबें नहीं पढ़ सका क्योंकि मेरे पास उन्हें पढ़ने का समय नहीं था। मेरे खुदा, भले ही तुम सुबह से रात तक 24 घंटे किताबें पढ़ो, तुम्हें गूगल की किताबों का 10वां हिस्सा ख़त्म करने के लिए 900 साल जीना होगा ताकि उनकी सामग्री को समझ सको। अगर तुम रूमी को ख़त्म करना चाहते हो, मेरा विश्वास करो, इसके लिए 100 साल का जीवन चाहिए। अगर तुम इसे छंद दर छंद समझना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 100 साल चाहिए ताकि तुम सिर्फ इसके साहित्य को स्वर्गीय देहकोदा की तरह समझ सको। खामोश रहो ताकि रूह आत्मा तुम्हारे लिए सांस ले बोले। इस बात पर ध्यान दो, क्या तुम खुदा को देखते हो या नहीं? नहीं, मैं नहीं देखता, लेकिन मुझे एक एहसास होता है। मैं यहाँ आता हूँ सिनेगॉग, चर्च, मस्जिद में, मुझे एक एहसास होता है। खुदा की कसम, तुम एक सिनेमा के बीच में जाकर भी वह एहसास पा सकते हो। जवाब यह है, क्या तुम खुदा को देखते हो या नहीं? अगर तुम हाँ कहते हो तो तुम्हें खुदा का पता देना होगा। अगर तुम नहीं कहते हो तो तुम पूरी तरह से खो गए हो, मतलब तुम रहस्यवाद के बारे में कुछ नहीं समझते। वह कहता है, खामोश रहो ताकि रूह तुम्हारे लिए सांस ले बोले। तैरना आशना छोड़ो और नूह की किश्ती में आ जाओ। यहाँ आशना के दो अर्थ हैं, एक है तैरना, दूसरा है जान पहचान परिचित। वह कहता है कि अगर तुम नहीं बोलते हो, अगर तुम अपना मुंह बंद करते हो, तो हम तुम्हें समझाएंगे कि रहस्यवाद का मार्ग क्या है, सूफीवाद क्या है, नाम क्या है, एक महान रहस्यवादी क्या है, प्रेम का मार्ग क्या है, जुनून और परमानंद क्या है, बकवास और बहस क्या है। हम तुम्हें यह समझाएंगे। रूमी का व्यक्तित्व बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, सिवाय इसके कि वह तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, वह तुमसे बहुत ज़्यादा समझता था। रूमी शम्स से मिलने से पहले तुमसे हज़ारों गुना ज़्यादा समझता था। अब 700 साल बाद तुम खुद को उस्ताद कहते हो, तुम किताबें प्रकाशित करते हो, तुम मेरे लिए रूमी की व्याख्याएं उगल रहे हो। सुनो,